हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु को जब नक्ष की करतूत के बारे में पता चला तो वो जल्दी से राजवंश विला आया। नक्ष अभी भी अपने किए की यही कहकर सफाई दे रहा था कि इशिका की याददाश्त जाने पर उसका उसके पास रहना जरूरी है। बातों ही बातों में नक्ष ने इशिका की प्रेग्नेंसी का जिक्र किया तो अभिमन्यु चौंक गया था। इशिका की प्रेग्नेंसी उन्होंने अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं की थी और ना ही डॉक्टर के अलावा कोई भी बाहर वाला इस बारे में जानता था। जब अभिमन्यु ने उसके मुंह से इशिका के प्रेग्नेंट होने की बात सुनी तो वो चौंक गया और अचानक उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। उसकी हरकतों की वजह से अभिमन्यु काफी गुस्सा था, लेकिन अब ये गुस्सा डर में बदल चुका था। अभिमन्यु दौड़ते हुए बाहर जाने लगा। वो बिना पलटे तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, पृथ्वी, इसे यहां से जाने मत देना। वहीं नक्ष जोर जोर से हंसने लगा था। अभिमन्यु को पहले ही उस पर यकीन नहीं था। ऊपर से नक्ष ने जिस तरह से इशिका के दिमाग में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, उससे अभिमन्यु पूरी तरह कन्फर्म हो गया था कि नक्ष बुरे इरादे से ही वहां पर आया है। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? क्या किया है इस बार तुमने? वसुधा नक्ष पर चिल्लाकर बोली। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, जब यहां आ गया हूं तो फिर से चाचू को मेरी इशिका को छीनने नहीं दूंगा, नक्ष ने सख्त आवाज में कहा। उसकी बात खत्म होते ही पृथ्वी ने नक्ष के गाल पर कसकर तमाचा लगाया। वो उसे वार्निंग फिंगर दिखाते हुए बोला, वो हमेशा से उनकी थी, यहां बीच में आने का काम तुम कर रहे हो। अब तुम पकड़े जा चुके हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचाएगा? मुझसे पहले तो तुम्हें उसे बचाना जरूरी है जिसके लिए तुम्हारे डियर बॉस भाग कर गए हैं, नक्ष ने सिर हिलाकर कहा। नक्ष की बातों से पृथ्वी को साफ हो गया था कि जरूर नक्ष ने कुछ गड़बड़ की है, जिसके बारे में अभिमन्यु समझ गया था। पृथ्वी अभिमन्यु के साथ जाना चाहता था, पर फिलहाल के लिए नक्ष को भी अपनी नजरों के सामने रखना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु गाड़ी में था और काफी तेज गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो बार बार बीच में दिशांक को कॉल कर रहा था, लेकिन दिशांक का नंबर बन जा रहा था। अभिमन्यु ने इशिका को भी कॉल किया, पर नया नंबर देखकर इशिका उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुझे पहले दिन ही नक्ष को वापस भेज देना चाहिए था। वो ये काम अकेले नहीं कर सकता है, जरूर अस्पताल में किसी ने उसका साथ दिया होगा, अभिमन्यु ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। उसका इशिका तक जितना जल्दी पहुंचना जरूरी था, उससे भी ज्यादा जरूरी नक्ष का साथ देने वाले का पता लगाना था। अभिमन्यु ने तुरंत केशव को कॉल करके कहा, मिस्टर सिंघानिया, जिस हॉस्पिटल में इशिका का ट्रीटमेंट किया गया था, जहां से उसकी दवाइयां आईं और जो लोग इशिका के ट्रीटमेंट के दौरान अटेंडिंग स्टाफ का काम कर रहे थे, उन सबको आप लाइनअप कीजिए, उनमें से कोई ना कोई नक्ष के साथ मिला हुआ है। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और ये सब क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु, क्या हुआ है? मेरी इशिका ठीक है ना? केशव ने घबराते हुए पूछा। वो इस वक्त अपने घर पर थे और अचानक अभिमन्यु के कॉल आने पर वो हड़बड़ा गए थे। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मेरा जल्द से जल्द इशिका के घर पहुंचना जरूरी है, वो घर पर अकेली है और मुझे नहीं लगता कि वो सेफ है, अभिमन्यु बोला। वो अकेली नहीं है, राधिका उससे मिलने के लिए गई हुई है, मैं राधिका से बात करता हूं और तुम फिक्र मत करो, केशव ने उसे समझाया। अभिमन्यु ने कॉल कट कर दिया था, उसे बस इशिका के पास जाने की जल्दी लगी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ राधिका इशिका से मिलने के लिए उसके घर गई हुई थी। दिशांक के ना होने पर इशिका कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने का सोच रही थी, लेकिन राधिका के आने पर वो उसके पास बैठी हुई थी। शमिसे सिंघानिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं और आपको इस तरह बार बार मुझसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए, आपकी फैमिली इससे खुश नहीं होगी और मुझे एक बार फिर से उनकी कड़वी बातें नहीं सुननी है, मेरी वजह से आपको भी वो काफी कुछ कहते होंगे, इशिका ने इस बार थोड़े सख्त अंदाज में कहा। वो जानती थी कि राधिका का बार बार आना आयशा और आदर्श को कभी पसंद नहीं आएगा, उसे उनकी बातें सुनने की आदत थी, पर वो अपनी वजह से राधिका का मूड अपसेट नहीं करना चाहती थी। राधिका ने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूं। अब मेरा छोड़ो और मुझे बताओ कि तुमने कुछ खाया, तुमने मेडिसिन्स ली? सॉरी, वो तो स्किप हो गई थी, मैंने मेडिसिन्स चेक की थी तो पता चला गलती से स्टॉक हॉस्पिटल में ही रह गया था। दिशांक ने अस्पताल में कॉल किया, उससे पहले ही उन्होंने सॉरी बोलते हुए दूसरी मेडिसिन भिजवा दी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, मैं ले लेती हूँ, इशिका बोली। राधिका को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी, उन्होंने खुद रिसेप्शन पर इशिका के डिस्चार्ज से पहले दवाइयां से लेकर हर एक चीज देखी थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मेडिसिन का स्टॉक वहीं पर रह गया था? राधिका कुछ कह पाती उससे पहले इशिका उठकर दवाई लेने के लिए चली गई। वो मेडिसिन निकालकर देख रही थी कि तभी उसके घर का दरवाजा झटके से खुला। अभिमन्यु अंदर आया और उसके हाथ से दवाइयां छीनकर फेंकती थीं। उसकी इस हरकत पर ऋषिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, तो वहीं राधिका भी जल्दी से उसके पास आई। राधिका समझ गई थी अगर अभिमन्यु ने ऐसा किया था तो जरूर उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। ये क्या है मिस्टर राजवंश, आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपकी दादी मुझे बहू कहते हुए आती हैं, तो अब आप आकर मेरी मेडिसिन को फेंक रहे हैं, ऋषिका नाराजगी जताते हुए बोली। वो अभिमन्यु को गुस्से में घूर रही थी। आई एम रियली सॉरी मिस सिन्हानिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत दवाइयां भेज दी हैं, इससे आपकी हेल्थ को खतरा हो सकता है। आप ये सब मुझे दे दीजिए, अभिमन्यु बोला, और उसने जल्दी जल्दी नीचे गिरी हुई दवाइयों को वापस बॉक्स में डालकर खुद के पास रख लिया था। राधिका और ऋषिका एक दूसरे की तरफ देख रही थी। राधिका बोली, हाँ मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था जब ऋषिका ने कहा कि गलती से स्टॉक हॉस्पिटल में ही रह गया था। वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, ऋषिका ने जवाब दिया। भले ही दिशांक ऋषिका के साथ रहता हो, लेकिन ऋषिका उसे काम के बहाने बाहर भेजती रहती थी। अभिमन्यु ने ऋषिका के घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा रखे थे, पर अब उसे किसी पर यकीन नहीं रहा था। आज नक्श ने गलत दवाइयां उस तक पहुंचाई थी, कल को वो कुछ भी कर सकता था, और कौन जानता था कि नक्श के साथ और कौन उसके इस साजिश का हिस्सा था। अभिमन्यु ऋषिका के सामने कुछ कह नहीं सकता था। उसने राधिका की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, इफ यू डोंट माइंड मिसेस सिंघानिया, आप कुछ दिनों के लिए मिस सिंघानिया को अपने साथ घर पर ले जाइए। सिंघानिया मेंशन जाने के ख्याल से ही ऋषिका के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। वो उस नर्क जैसी जगह में कभी वापस नहीं जाना चाहती थी जहां मालविका रहती थी। ऋषिका ने तुरंत नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं ठीक हूं, और मुझे समझ नहीं आता आप सब मुझे लेकर इतनी परेशान क्यों हो रहे हैं। मिस्टर राजवंश, मैं आपको जानती तक नहीं हूं, मिसेस सिंघानिया से मैं काफी टाइम बाद मिल रही हूं, इन्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। देखिए मुझे इन सब प्यार और अच्छे बिहेवियर की आदत नहीं है, मैं अकेले खुश हूं और मुझे कोई खतरा नहीं है। ये सब हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुआ है, लेकिन आगे मैं खुद ध्यान रख लूंगी। जब ऋषिका ने यह कहा कि उसका अभिमन्यु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो अभिमन्यु एक पल के लिए वहीं सन रह गया था। वो जानता था ऋषिका सब भूल गई है, पर फिर भी उसके शब्द उसे अंदर से तकलीफ दे रहे थे।
अभिमन्यु जवाब में कुछ नहीं बोला। राधिका ने मामले को संभालते हुए कहा, ऋषिका अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे घर पर आदर्श, मालविका और आयशा तीनों ही नहीं हैं। वो लंबे टाइम के लिए बाहर गए हैं, जब वो वापस आएंगे तब तुम चली जाना। आज जो भी हुआ उसके बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। राधिका का लहजा काफी सख्त था। ऋषिका मना करना चाहती थी, पर राधिका उसके सुनने को तैयार नहीं थी। वो अंदर जाकर उसके कपड़े पैक करने लगी थी, तो वहीं अभिमन्यु और ऋषिका बाहर खड़े हुए थे। ऋषिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा, जो हर्ट नजर आ रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर राजवंश, आखिर आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? आप नहीं जानते, पर आज आपकी दादी भी यहाँ पर आई थी, और वो मुझे बहू कह रही थी। ये तो नक्श ने सही टाइम पर जाकर मामले को संभाल लिया और यही कहा कि आपकी वाइफ लंदन में रहती है, इस वजह से आपकी दादी अपनी बीमारी के चलते किसी को भी बहू बुलाने लगती हैं। अगर आपकी दादी आपकी वाइफ को इतना ही मिस करती हैं, तो आप उसे घर क्यों नहीं बुला लेते? ऋषिका की आंखों में कई सवाल थे। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, काश मैं उसे अपने पास बुला पाता। क्या मतलब है आपके कहने का? ऋषिका ने हैरानी से पूछा। कुछ भी नहीं, अपना ख्याल रखिएगा मिस सिंघानिया, और आपका मिसेस सिंघानिया के साथ रहना ही सही है, अभिमन्यु ने इतना ही कहा और उस दवाई के डिब्बे के साथ बाहर आ गया था। अगर वो ऋषिका के सामने थोड़ी देर और खड़ा रहता तो शायद अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। अभिमन्यु के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, और ये ऋषिका भी महसूस कर रही थी। उसे अपने सीने में दर्द जैसा महसूस हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से इन्हें हर्ट हो, पर इन्हें तकलीफ में देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? ऋषिका मन ही मन बोली। वो खुद अपने बर्ताव पर हैरान थी। राधिका जिद करके ऋषिका को अपने साथ ले गई थी, तो अभिमन्यु थोड़ा बेफिक्र हो गया था। ऋषिका के राधिका के साथ जाने के बाद वो उन दवाइयों के डिब्बे के साथ सीधा राजवंश अंपायर के फोरेंसिक डिपार्टमेंट में पहुंचा। उसने उन दवाइयों की जांच करने के लिए उन्हें दे दिया था। उन पर किसी तरह का नाम नहीं लिखा हुआ था, बस ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर डाली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सेलिना घर पहुंची। उसने आशिका को ढूंढ लिया था। वो ये बात तृप्ति को बताना चाहती थी, पर उसने देखा तृप्ति के पास एक लड़की आई हुई थी जो उससे बहस कर रही थी। वो कोई और नहीं, आशी थी। सेलिना आशी के बारे में नहीं जानती थी, बस उसे गुस्सा आ रहा था कि वो तृप्ति से बदतमीजी से बात कर रही थी। आप बस यूजलेस हैं, इतने दिन तक आप एक लड़की को नहीं ढूंढ पाई। कभी कभी मुझे लगता है कि आपने वो सब मेरी वाइफ बनाने के लिए नहीं बल्कि स्पॉइल करने के लिए किया था। क्या जरूरत थी उस लड़की को जिंदा रखने की? आशी अपने गुस्से में तृप्ति पर चिल्ला रही थी। इसी बीच सेलिना कमरे के अंदर आई। वो तृप्ति के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने आशी को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू जो मेरी मॉम से ऐसी बात कर रही है? और तुम कौन हो जो मुझसे ऐसी बात कर रही हो? देखो, तुम जो भी हो, फिलहाल हमारी बात के बीच में मत आओ। वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्से में किसी का मुंह तोड़ दूं, आशी ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, तो तुम मुझे मुंह तोड़ने की धमकी दे रही हो? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि धमकाना क्या होता है, सेलिना ने सिर हिलाकर कहा। उसने अपने पास में रखा हुआ वास उठा लिया था और वो लगभग आशी पर वार करने ही वाली थी कि तृप्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सेलिना, ये क्या कर रही हो? ये मेरी बेटी है, हम बस बात कर रहे थे, आशिका नहीं मिल रही थी तो हम सब थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तृप्ति ने उल्टा सेलिना को ही डांटा। अब तक आशी को इस बारे में पता नहीं था कि आशिका का नाम नहीं बदल गया है। सेलिना के मुंह से आशिका का नाम सुनकर आशी ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, ग्रेट, इसका मतलब उसका नाम भी वही है। आप क्या पागल हो गई हैं? उसकी शक्ल देखकर कोई ना पहचाने, लेकिन नाम से उन्हें पता चल जाएगा वो लड़की कौन है। तृप्ति की नजरें झुकी हुई थीं। गलती तो उसने की थी, लेकिन सेलिना सच में तृप्ति को माँ की तरह प्यार करती थी और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई तृप्ति से बदतमीजी से बात करे। सबसे पहले अपना टोन नीचे करो। उस लड़की का बायोमेट्रिक से लेकर बाकी सारी पहचान रजिस्टर थी, तो उसका नाम बदलना आसान नहीं था। क्या तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है? और दूसरी बात, चिल्लाना बंद करो, मैंने उसे ढूंढ लिया है, सेलिना ने बेपरवाही से बताया। जैसे ही सेलिना ने आशिका को ढूंढने की बात कही तो तृप्ति और आशी के चेहरे पर राहत के भाव नजर आ रहे थे। कहाँ है वो? आशी ने जल्दी से पूछा। अच्छा, इसीलिए तुम मुझे कॉल कर रही थी क्या? सॉरी, मैं तुम्हारा कॉल नहीं ले पाई बेटा। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है, मैं जल्द से जल्द मिस्टर स्काई को कॉल करती हूँ ताकि उसे मुसीबत को यहाँ से ले जाए, तृप्ति ने खुश होकर पूछा। सेलिना कोई बेवकूफ नहीं थी जो उसे तृप्ति का बदला हुआ लहजा समझ ना आए। थोड़ी देर पहले वो अपनी बेटी के चक्कर में उसे डांट रही थी, तो अब जरूरत पड़ने पर वो उससे प्यार से बात करने लगी। सेलिना ने फिलहाल के लिए इन सबको नजरअंदाज किया। वो आशी के सामने तृप्ति से बहस नहीं करना चाहती थी। उसके लिए आशी तीसरी इंसान थी जिसे वो अपनी और अपनी माँ के बीच में नहीं आने देना चाहती थी। मैं उसे यहाँ नहीं ला पाई क्योंकि वो किसी के लिए काम करती है। जब तक उस आदमी का काम पूरा नहीं हो जाता, वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। पर मैंने उसके कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी डिटेल्स ले ली हैं। डोंट वरी, वो थोड़ी देर में उसे फ्री कर देगा, तब हम उसे ले आएंगे, सेलिना ने बताया। आशी ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो दांत पीसते हुए बोली, सच में इस बेवकूफ लड़की को आपने बड़ा किया है, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो उसे लेकर भाग गया होगा। नहीं, वो उसे लेकर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी डिटेल्स हैं। वैसे भी वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अभिमान राजवंश है उसका नाम, और वो AR एम्पायर्स का मालिक है, सेलिना ने जवाब दिया। अब तक तृप्ति और आशी इस बात पर गुस्सा कर रही थीं कि सेलिना ने आशिका को जाने दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अभिमान का नाम सुना, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। आशिका अभिमान तक पहुंच गई थी तो इसके पूरे चांसेस थे कि वो सिंघानिया फैमिली तक भी पहुंच सकती थी। तृप्ति ने अब तक आशिका को अपनी फैमिली से दूर रखने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं जानती थी कि आशिका अगर किसी के पास पहुंची है तो वो अभिमान राजवंश है, उसके बचपन का दोस्त जिसके ऊपर उसी के मर्डर का इल्जाम लगा था।